सुबह शुरू हुआ समारोह दोपहर बाद जाकर समाप्त हुआ, पर ना तो कशिश को मेहंदी लगवाने का अवसर मिला और ना ही सरिता भाभी को। पहले वो नाच गाने में लगी रही, उनसे ही समारोह में रौनक लगी हुई थी। फिर दोपहर के भोजन का प्रबंध देखने चली गई, उसके बाद मेहंदी वाली महिला चली गई थी, तो कशिश नाक से कोड़कर रह गई। आगे का आधा दिन कामों में ही बीत गया। रात के कार्यों के बाद सरिता और कशिश ने एक दूसरे के हाथों में मेहंदी लगाई। कशिश कमरे में पहुंची, तब तक ईशान उसका इंतजार करते करते सो गया था। कशिश कपड़े नहीं बदल सकी तो एक नज़र ईशान को देखा और बिस्तर पर लेट गई। ईशान की सारी बचत रामविलास जी के इलाज में खर्च हो गई थी। रजनी की शादी के लिए उसने अपनी दुकान गिरवी रख दी थी, बस वही एक चीज़ थी उसकी अपनी जिस पर उसका अधिकार था। पर अभी ये बात किसी को पता नहीं थी। उसने एक पैसा भी किसी से नहीं लिया, किसी से कोई मदद नहीं ली। चक्रव्यूह में फंसे जैसे अकेला हर ओर घूमता रहा, हर काम खुद से संभालता रहा, भाई का हर फर्ज निभाता रहा, माथे पर शिकन की एक रेखा तक नहीं आई। कशिश भी हर रस में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, हर जिम्मेदारी बखूबी निभाने का प्रयास कर रही थी, हालांकि यहाँ के रीति रिवाजों से अनजान थी। पहली बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही थी, पर भाभी और जया दीदी उसकी बहुत मदद कर रही थी। चाची और बड़ी मम्मी भी उसे सब समझाती और बताती रहती थीं। कशिश ने भाभी और घर की बहू होने का हर फर्ज बखूबी निभाया था और निभा रही थी। अगले दिन सुबह से ही दोनों घरों में रस्में शुरू हो गई, जिसमें देखते देखते सारा दिन बीत गया। ईशान बारात घर गया हुआ था, वहाँ टेंट, स्टेज और खाने पीने की व्यवस्था देख रहा था। नन्हा कुनाल उसके आगे पीछे घूम रहा था। सुबह यहाँ आया सो सीधे शाम को घर गया। रजनी तैयार हो रही थी और कशिश उसके पास ही थी। आंगन में मंडप लगाया गया था क्योंकि शादी यहीं होनी थी। फिर वो कमरे में चला आया। कशिश ने उसके कपड़े निकाल रखे थे, जिन्हें पहनकर वो वापस चला गया। घर के सभी पुरुष तब तक वहाँ पहुँच चुके थे। गाजे बाजे, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजियों के बीच बारातियों संग दुल्हा बना अभिषेक बारात घर पहुँचा, जहाँ घर की स्त्रियाँ पहले ही पहुँच चुकी थीं। पहले शुभ्रा शुभिका के साथ कुछ और लड़कियों ने द्वार छिकाई का नेग लिया, फिर कौशल्या जी ने आगे बढ़कर दुल्हे की नज़र उतारी। दुल्हे संग बारात का स्वागत किया गया। साथ सजावट से लेकर खाने पीने तक सब इंतजाम बहुत बढ़िया थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। कुछ देर बाद कशिश और बाकी स्त्रियाँ लड़कियों संग दुल्हन बनी रजनी वहाँ आईं। वरमाला के वक्त उन पर खूब फूल बरसाए गए, फोटोएं खींची गईं और उसके बाद रजनी को वापस ले जाया गया। घर के आंगन में शादी होनी थी, यहाँ से सब लोग सीधे वहीं पहुंचे और शादी की रस्में शुरू हुईं। कशिश रजनी के साथ साई की तरह रही, जो मांगते वो झट से लाकर देती, रजनी को उठने बैठने में मदद करती। एक तरफ खड़ा ईशान खामोशी से उसे देख रहा था, कैसे कशिश फुर्ती से सब काम संभाल रही थी। अपनी बड़ी बहन की शादी की तैयारियों में खुद को भुलाए हुए थी। नाटकीय शादी में पहले दिन से उसने अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया, निस्वार्थ भाव से सबका और उसका ख्याल रखा। उसके परिवार को न सिर्फ दिल से अपना माना, बल्कि उस बिखरे परिवार को फिर से एकजुट कर दिया। उसके कारण आज ये पूरा परिवार साथ था और बढ़ चढ़कर हर काम हर रस में हिस्सा ले रहा था, वरना शायद उसे रजनी की शादी भी मंदिर में सादगी से ही करवानी पड़ती, या शायद घर में होती तब भी इतनी धूमधाम से नहीं हो पाती, इतनी रौनक नहीं लगती, और शायद तब रजनी इतनी खुश भी नहीं होती जितनी वो आज थी। देखते देखते रात गुजरने लगी और शादी की रस्में आगे बढ़ने लगी। कन्यादान कशिश और ईशान ने किया था तो भाई का फर्ज भी उसी ने निभाया। रजनी कुछ भावुक हो गई थी, पर कशिश ने उसे रोने नहीं दिया। सप्तपदी के बाद सिंदूरदान की रस्म हुई। उसके बाद अभिषेक ने उसे मंगलसूत्र पहनाते हुए शादी के परिणय सूत्र में बांध लिया। दोनों पर फूलों की वर्षा की गई और बड़ों का आशीर्वाद लिया गया। शादी संपन्न हुई और रजनी विदा होकर अपने ससुराल चली गई। कईयों की आंखें नम हुईं, ईशान का दिल भी रोया, पर वो खुश था कि अब रजनी को उसके हिस्से की खुशियां मिलेगी। लड़की की विदाई के साथ मेहमानों का जाना भी शुरू हो गया। दूसरी तरफ सबसे पहले दुल्हन और दुल्हे को विश्वनाथ मंदिर ले जाया गया, उन्हें भोलेनाथ का आशीर्वाद दिलाया गया। फिर बड़े ही धूमधाम से नई बहू का स्वागत किया गया, जिसका इंतजार उस घर के साथ वहां रहने वाले लोगों ने सालों से किया था, पर आज उनका इंतजार खत्म हो गया था। रजनी ने उस घर की बहू के रूप में उस घर में कदम रखा था और सभी बहुत खुश थे। अभिषेक और रजनी की खुशी तो उनके चेहरे पर झलक रही थी, जबकि शिखा खुशी से उछलती फिर रही थी। वहां भी घर मेहमानों से भरा था और नए विवाहित जोड़े से शादी के बाद वाली रस्में करवाई जाने लगी थी। रात का समय था। रजनी और अभिषेक इस वक्त अभिषेक के कमरे में एक दूसरे के आमने सामने बैठे थे। अभिषेक एकटक रजनी को देखे जा रहा था। उसके यूं देखने से रजनी घबराने लगी। क्या कर रहे हो? रजनी ने अपनी कांपती पलकों को उठाकर उसे देखते हुए झिझकते हुए धीमे स्वर में कहा, देख रहा हूँ। अभिषेक ने यूं ही अपलक उन्हें निहारते हुए संजीदगी भरे लहजे में उत्तर दिया, क्या देख रहे हो ऐसे? रजनी थोड़ी घबराई। ये सवाल सुनकर अभिषेक ने मोहब्बत छलकाती निगाहों से उन्हें निहारते हुए कोमल स्वर में उत्तर दिया, तुम्हें देख रहा हूँ। देख रहा हूँ कि आज कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम नहीं जानती तुम्हें इस रूप में देखने के लिए कितना इंतजार किया है मैंने। अब तक ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन ख्वाब हुआ करता था, पर आज एक लंबे इंतजार के बाद वो ख्वाब हकीकत बनकर मेरे सामने बैठा है। तुम इस तरह दुल्हन बनी कहानी यहाँ अपने कमरे में अपने सामने बैठी देखकर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ शायद मैं शब्दों में बयां करके तुम्हें बता ना सकूँ, पर यकीनन ये मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा है जिसे मैं हमारी मोहब्बत की मिठास खोलकर यादगार बना लेना चाहता हूँ। उनकी आंखों में अधूरे ख्वाब छलकने लगे थे, कुछ हसरतें थीं जो मौन में भी जाहिर थीं। रजनी ने उनकी बात सुनी तो भीनी सी मुस्कान उनके लबों पर उभर आई। आगे बढ़कर वो अभिषेक के सीने से लग गई और अपनी मेहंदी रची चूड़ियों से सजी बाहों को उनकी पीठ पर लपेटते हुए उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मैंने भी इस लम्हे का बहुत इंतजार किया। रजनी के उत्तर से अभिषेक के लबों पर सौम्य सी मुस्कान उभर आई। उन्होंने रजनी को अपनी बाहों में भरते हुए पैर से उसके सर को चूमा और एक दूसरे की बाहों में समाये दोनों अपनी मोहब्बत को महसूस करने लगे।